ज्ञाने प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशायत प्रेम भक्ति गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंदो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंदो लोकनाथ के रिवाना प्रभु पाद के रिवाना भक्ति वेदांत स्वामी नीति सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
Bye.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nita Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, 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 His Divine Rishala Bhacharana Arvinda Bhakti Vedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. His Gaon Vibhuti Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishwavada Paramahamsa Parivrijaka Acharya Stuttara Sata Shishimati His Divine Rishala Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prems Kahosa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Brajami Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Samavita Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, glorious to Shri Shri Guru and Shri Gauranga.
Hamare piche piche Guru Vandana dhulayenge. Hamare Gurudev, Adhyatmi Guru ke Charan Kamal hi ek matra sadhan hai, jinke dwara hum shuddh bhakti mein seva prapt kar sakte hain. मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूँ। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान करते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ जगत गुरु शील प्रभुपाद की।
जय राधा माधव। ही तो
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वन चारे जमुना तीर वन माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन 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 जमुना तीर वन रावण चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज
ಅರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವಿಧಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮೃತ ಕೀ ಜಯ ತಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮನಂದೇ ಓ ಗ್ಲೋರಿಸ್ಟ ಸಮಲ್ ಬಿ ಗೋರಿಸ್ ಓ ಗ್ಲೋರಿಸ್ಟ ಸಮಲ್ ಬಿ ಗೋರಿಸ್ ಓ ಗ್ಲೋರಿಸ್ಟ ಸಮಲ್ ಬಿ ಗೋರಿಸ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ಗೌರ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತಾಪ್ಸ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಆಜ್ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಕೆ ಲೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೀಲಾಮೃತ ಕಕ್ಷಾ ಮೇ और हमारा परम सौभाग्य हमारे बीच में उपस्थित है परम पूजनीय वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज हरि हरि हमारा सौभाग्य कि महाराज एकादशी के दिन हमें आशीर्वचन देने आए हैं और बहुत ही लंबे अरसे के बाद आए हैं महाराज जी का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है पूरे विश्व भर में भ्रमण करते रहते हैं तो एक संक्षिप्त परिचय महाराज जी का प्राकट्य गुजरात भारत में ही हुआ इसके बाद पूरे परिवार के साथ ईस्ट अफ्रीका में चले गए और उसके बाद US में और US में जाने के बाद इनका प्रभुपाद जी के शिष्यों से संपर्क हुआ और कृष्णा कॉन्शियस में इंट्रोड्यूस हुए फिर प्रभुपाद से इन्होंने दीक्षा ली और इस कॉन में बहुत सी मैनेजरियल और प्रीचिंग पोजीशन में महाराज ने सेवा की GBC के सेक्रेटरी रहे भारत में भरतपुर में एक आश्रम और वृंदावन में एक आश्रम के महाराज इंचार्ज थे साथ में नॉर्थ इंडिया डिविजनल काउंसिल के चेयरमैन रहे पूरे हरियाणा पंजाब के जोनल सेक्रेटरी रहे ईस्ट UP के भी इसके बाद महाराज जी 1998 से दीक्षा गुरु की सेवा कर रहे हैं और पूरे विश्व में विख्यात हैं अपने बहुत ही फिलोसफिकल लेक्चर्स के लिए महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता फिर भी महाराज रुकते नहीं हैं लगातार भ्रमण करते रहते हैं लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं और प्रचार करते हैं और इस्कॉन का न्यू वृंदावन में पहली बारी महाराज जी के प्रयासों से शीना जी के DTs वहाँ पर इंस्टॉल हुए थे न्यू वृंदावन में और महाराज जी में बहुत से विशेष गुण हैं बहुत स्नेह देते हैं सबको बहुत प्रेम देते हैं और पूरे विश्व में जैसे कि फिजी न्यूजीलैंड US ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नेपाल बर्मा इत्यादि में महाराज जी का क्षेत्र है वहाँ भ्रमण करते हैं और फिजी में एक मंदिर शुरू किया गया था परम पूजनीय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की तरह वो पूरा नहीं हो पाया था तो उस पूरे मंदिर को पूरे प्रयासों के साथ महाराज ने पूरा मंदिर फिजी में बनाया है और फिजी वो स्थान है जहाँ की कालिया दमन के बाद भगवान ने कालिया को आदेश दिया कि आप फिजी आइलैंड्स में जाइए और महाराज जी का बहुत धन्यवाद देते हैं कि महाराज जी ने आज हमें संग दे रहे हैं साथ ही हम वेलकम करना चाहेंगे इस ग्रेस शिव आराध्य प्रभु जी का जो कि USA हैं प्रभुपाद जी के शिष्य हैं तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के परम पूजनीय महाराज जी का और शिव आराध्य प्रभु जी का स्वागत करेंगे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
सभी भक्तों से निवेदन है अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड पर रखें हरे कृष्ण
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्ट प्रायेषु पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैश्चिकी। श्रील प्रभुपाद लीलामृतम श्रीमद् भागवत के अनुसार एक विशुद्ध चरित्र का निरूपण है। श्रील प्रभुपाद जी के चरित्र के बारे में उनकी शिक्षाओं और उनके उदाहरण से हम अपना जीवन भी इसी तरह सार्थक करें, ऐसा स्वयं का भी अनुरोध है। शिक्षा पद्धति में प्रचार के लिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, डू एज आई डू, मैं जैसा करता हूँ वैसे करो, स्पीक एज आई स्पीक, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा बोलो, जस्ट रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे दोहराओ। तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत जाओ हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री ससुरदास गोस्वामी ने इनका आलोकन करा है, तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी के चरित्र के बारे में लिखना और उसके लिए प्रभुपाद जी के संपर्क में आने वाले सारे भक्त और उनके मित्र और तत् उस समाज के यानी कालीन जो जो व्यक्ति उनके परिचय में है, इनको ढूंढ निकालना और उनका मंतव्य लेना, वो भी प्रभुपाद जी का चरित्र का वर्णन करते हैं। तो लीलामृतम ये अमृतमय लीला है, प्रभुपाद जी का जीवन सामान्य जनों का जीवन नहीं है, फिर भी सामान्य जन के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। तो उनके बारे में जो जो कहा गया है और लीलामृत में इसका निरूपण किया गया है वो असामान्य है, सामान्य नहीं है। नवल कथाएं जीवन चरित्र तो बहुत मिलने लगे, लेकिन इनमें एक चीज का अभाव होता है, दिव्यता का। जब प्रभुपाद जी के जीवन में दिव्यता का अनुभव करना बहुत संभव बन जाता है। कोई योग पद्धति में दिव्यता के बहाने चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार तो वैसे ही मामूली कहलाते हैं, जो जो इन आंखों से देख पाते हैं वो चमत्कार के रूप में चला जाता है, लेकिन चमत्कार भौतिक बनता रहता है। आध्यात्मिक चमत्कार देखना हो तो जब गोरे भक्तों को वृंदा आई मीन इंडिया भारत ले आए थे तब ये चमत्कार के लिए देखो मैंने सफेद हाथी ले आया, ऐसा चमत्कार कोई कर सकता था, आज तक किया नहीं है और आज तक कोई कोई करेगा भी नहीं, उसके अनुकरण में कर सकते हैं लेकिन उसमें दम नहीं। कोई दो चार सैंपल ला सकते हैं प्रभुपाद जी के चमत्कार अपने महाराज जी से जानते ही होंगे बहुत सारे, क्या क्या वो स्पर्श मणि जैसे चमत्कार किए हैं उन्होंने। तो आज हम प्रकरण 51 में हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें शीर्षक है जो आगे पढ़ रहे हैं। ये प्रभुपाद जी यहाँ कई स्थलों के बारे में उनकी चर्चा इसमें बंबई की भी आती है, श्रील प्रभुपाद जी के सचिव के रूप में या रामेश्वर स्वामी भारत में अंतिम दिवस में थे, प्रभुपाद जी की कुटीर में प्रविष्ट होकर उन्होंने भावी महायुद्ध के संबंध में जिज्ञासा की। उन्होंने आरंभ किया, आपने कई बार उल्लेख किया है कि रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष अनिवार्य है। प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, यदि वे दोनों कृष्ण भावनामृत को समझ ले तो संघर्ष नहीं होगा। अब हम रूसी भाषा में भी प्रकाशन कर रहे हैं। जब रामेश्वर ने पूछा कि यदि अनेक नगरों पर बम वर्षा हुई तो उस दशा में क्या होगा, इस पर प्रभुपाद जी ने कहा, उस दशा में लोगों की बुद्धि आ जाएगी और वे सादा कृषि प्रधान जीवन अपना लेंगे, और ठीक उसी तरह जैसे वे इस काम के कृषि फार्मों पर लोग सामुदायिक जीवन का उदाहरण रख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि यह उनके लिए एक अच्छा पाठ होगा। तो क्या यह संघर्ष कृष्ण भावनामृत के प्रचार का एक हिस्सा है? और हाँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कृष्ण का उद्देश्य केवल अपने भक्तों की रक्षा ही नहीं करना है, वरन दुराचारियों का विनाश भी करना है। संघर्ष का तात्पर्य है कि उनके दुष्कर्म का विनाश, उसका समापन। अतएव संघर्ष के पश्चात लोगों को प्रभावित करने का अवसर आएगा। प्रभुपाद बोले, हम प्रत्येक अवसर का उपयोग करेंगे, हम सबसे अच्छे अवसरवादी हैं। अनुकूल्येन कृष्ण, यह अवसर कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए अनुकूल है, हम उसे तुरंत स्वीकार करेंगे। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह किस तरह आता है, हम जनमत पर निर्भर नहीं रहेंगे कि यह अच्छा है अथवा बुरा है। अच्छा का तात्पर्य यह है कि वह कृष्ण भावनात्मक के प्रचार के अनुकूल है। रामेश्वर ने कहा कि ऐसा लगता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को और अधिक फैलाना होगा इससे पहले कि वह वास्तव में उतना प्रभावशाली बन सके जितना प्रभुपाद चाहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, यह बढ़ेगा, यह बढ़ रहा है। केवल हमारे कार्यकर्ताओं को एकनिष्ठ और कठोर बनना है और वह बढ़ेगा। किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी, यह सत्य है। केवल हमें बहुत कठोर और एकनिष्ठ होना है, दृढ़ है, कठोर नहीं। कठोर शब्द कुछ और पर्याय है, लेकिन समझ लेना, दृढ़ता बताता है। हृदय कठोर यानी बहुत सख्त हृदय वाला बनो, नरम हृदय वाले काम नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कृपालुता छोड़नी चाहिए। तो और कोई भी इसका बढ़ना रोक नहीं सकेगा। रामेश्वर ने कहा, केवल हम ही ऐसे होंगे जिन्हें वह दृष्टि प्राप्त है कि युद्ध के बाद क्या करना है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, हमारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है, हम कोई सिद्धांत नहीं रख रहे हैं, हम सदैव केवल तथ्य प्रस्तुत करते हैं और वह तथ्य साकार हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमने कृषि फार्म का सामुदायिक जीवन आरंभ किया, वह क्रमशः साकार रूप ग्रहण करता जा रहा है। अभी तक वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है, तब भी आशा है कि वह लोगों को शांति देगा, पर्याप्त आशा है। कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद से मिलने भुवनेश्वर के और अधिक लोग आने लगे। एक दिन सायंकाल अपने कमरे में बैठे हुए वे कई लोगों से बात कर रहे थे कि उनमें से एक ने पूछा, अच्छा स्वामी जी, बताइए कि वास्तव में ईश्वर क्या है? श्री प्रभुपाद जी के नेत्र अविश्वासपूर्वक विस्फरित हो गए, यह क्या है? उन्होंने कहा आप भारत में रहते हैं और आप नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, यह कलयुग का पतन है। श्रील प्रभुपाद ने अपने तीक्ष्ण आलोचना जारी रखी और तब बोले कि भारतीयों को वैदिक साहित्य और संस्कृति का विशेष लाभ प्राप्त है, इसलिए उन्हें जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है। प्रभुपाद ने अगले दिन संध्या समय अपना पहला सार्वजनिक व्याख्यान दिया और उसमें लगभग 150 लोग सम्मिलित हुए। उन्होंने अपना व्याख्यान यह कहकर आरंभ किया कि पिछली रात एक महानुभाव ने प्रश्न किया था कि ईश्वर क्या है। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि श्री भगवान हमारे देश भारतवर्ष में साकार रूप में प्रकट होते हैं और अपने आदेश छोड़ जाते हैं जिन्होंने आचार्यों ने स्वीकार किया है। प्रभुपाद ने बताया कि भारत को विशेष अनुग्रह प्राप्त है क्योंकि भगवान यहाँ अवतरित होते हैं और स्वयं अपने आदेश सुनाते हैं। उन्होंने आगे कहा किंतु वर्तमान समय में हमारे युवाजन पूछ रहे हैं कि ईश्वर क्या है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि हम पशु सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि देहात्म बुद्धि वाले कोई भी व्यक्ति जो अपनी पहचान परिवार देश या जाति से संबंध जोड़ करता है तो एक गाय या गधे के से बेहतर नहीं है, वैदिक शास्त्र की यह सम्मति है। उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि भारतीयों को पतन की उस सीमा से बचना चाहिए जहां उन्हें पूछना पड़े कि ईश्वर क्या है। दुर्भाग्य से जब व्याख्यान समाप्त करने बाद उन्होंने प्रश्न आमंत्रित किए तो फिर वही बात सामने आई। एक व्यक्ति ने पूछा मैं कृष्ण शब्द का अर्थ जानना चाहता हूं। प्रभुपाद ने उत्तर में कहा आप नहीं जानते हैं कि कृष्ण का क्या अर्थ है, आप नहीं जानते। उस व्यक्ति ने उड़िया में कुछ कहा और तब अंग्रेजी में बोला व्युत्पत्ति मूलक अर्थ। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, इसका मतलब क्या है? शब्द की उत्पत्ति का मूल, ये शब्द कहां से आया वो शब्द की छानबीन करना चाहता है। कृष्ण भगवान है, भगवान शब्द की छानबीन के लिए तो पराशर मुनि ने बोल रखा है सर्वैश्वर्य पूर्ण, वही तो भगवान होते हैं, भग इति। तो जब प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, कृष कर्षति, हाँ कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षक, सर्व आकर्षक, और उसके अतिरिक्त आप कृष्ण को नहीं जानते। यही कठिनाई है कि हमारे लोग इतने गिर गए हैं कि वे पूछते हैं कि ईश्वर क्या है, कृष्ण क्या है, वैसा ही है जैसे कोई रामायण का 7वां स्कंद पढ़ने के बाद पूछे कि सीता का पिता, सीता किसका पिता है, सीता और पिता, सीता किसका पिता है। क्योंकि शब्द की तो समांतर भाषा, ता शब्द दोनों में कोई सी है कोई पी है, फर्क क्या पड़ा उसके लिए? तो सीता का पिता क्या कौन है? यह स्थिति वैसी है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां कृष्ण ने सब कुछ कह दिया है और हम पूछ रहे हैं कि कृष्ण का क्या अर्थ है, ईश्वर क्या है। तो यही दशा है, अत्यंत गिरी हुई दशा। जब प्रभुपाद कार में बैठे पार्क में प्रातः भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि संजय गांधी के आगमन की घोषणा करने वाले सूचना पट्ट लगे थे और पताकाएं फहरा रही थी। संजय गांधी का विशेष राजनीतिक कार्यक्रम यह था कि हरेक को साक्षर होना चाहिए, खिड़की से बाहर एक विपन्न उसर भूखंड को देखकर प्रभुपाद ने कहा कि साक्षरता का लाभ क्या है जब लोग कंगाल हैं और भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इस्कॉन के संध्याकालीन कार्यक्रम में थोड़ी सी खिचड़ी प्राप्त करने आते थे, इसीलिए नहीं कि वे प्रसाद हैं, वरन इसीलिए कि वे भूखे हैं। इसलिए यदि वर्षों की शिक्षा के बाद वे पढ़ना सीख जाते हैं और उनकी कमाई अत्यल्प है और रोजगार की स्थिति सही रही तो शिक्षा से क्या लाभ। जीवन ऐसी शिक्षा के लिए नहीं है। प्रभुपाद को खेद था कि इतनी सारी भूमि बिना जोते बेकार पड़ रही है। कई लोगों को मंथर गति से दौड़ते देखकर प्रभुपाद जी ने टिप्पणी की कि अधिकांश लोग गरीब और भूखे हैं, जबकि थोड़े से लोग विशाल भवन में रहते हैं, जरूरत से अधिक खाते हैं और चर्बी कम करने के लिए दौड़ लगता है। श्री प्रभुपाद ने कहा कि तो वे लोगों की शिक्षित बनाएंगे और कुछ समय बाद ये लोग नक्सलाइट आंदोलन में सम्मिलित हो जाएंगे और अमीरों की हत्या करेंगे। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को खेतों पर काम में लगाना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन के लोग भी काम करना चाहिए, क्योंकि यदि वे समुचित रूप में कार्य में व्यस्त नहीं रहेंगे तो गप्पे हाकेंगे और कामातुर बनेंगे। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद श्रील प्रभुपाद जगन्नाथपुरी जाने के लिए कई बार अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके थे, जो वहां से एक घंटे की दूरी पर था, क्योंकि उन्हें आशा थी कि एक दिन वे पुरी में एक विशाल केंद्र का निर्माण करेंगे, इसीलिए वे कुछ बिकाऊ प्लॉट देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे 1958 से ही पुरी नहीं गए हैं, क्योंकि उनके पाश्चात्य शिष्यों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि वे भी मंदिर में नहीं जाएंगे, किंतु वे पूरी तरह पूरी यह देखने के लिए जाना चाहते थे कि उन्हें कैसा भूखंड वहां प्राप्त हो सकता है। एक दिन बड़े तड़के प्रभुपाद कार द्वारा बंगाल की खाड़ी तक स्थित पुरी के लिए चल पड़े। उन्होंने कई जायदादें देखी, किंतु या तो उनकी स्थिति खराब जगह पर थी या इमारतें जीर्ण शीर्ण थी या दोनों ही बातें थी। अपने लोगों के साथ प्रभुपाद सागर तट पर विचरते रहे। उछले लहरें उछल रही थी। वे हंसने लगे और बोले, मैंने यहाँ खूब उछल कूद की है। 1920 ईस्वी सन या 1921 में मैं यहाँ आया था। उस समय मेरा विवाह हो चुका था। मेरा विवाह 1918 में हुआ था। बीए की परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद मैं यहाँ आया था, क्योंकि मैं प्रसन्नता से भरा था, इसलिए मैं उछल कूद कर रहा था। जब लहरें के पास आती तो मैं उछल पड़ता था। अब 57 वर्ष बीत चुके हैं। लोग कहते हैं कि हमारा शरीर नहीं बदलता, लेकिन कहाँ है वह शरीर। अब मैं छड़ी के सहारे चल रहा हूँ। उस समय मैं उछल रहा था, अब मैं यहाँ हूँ, मुझे याद है, किंतु शरीर बदल गया है, इसको समझ में क्या कठिनाई है। मैं वही हूँ, अन्यथा मैं उन बातों को स्मरण कैसे कर रहा हूँ। किंतु वह शरीर अब नहीं रह गया है। यह देहांतर प्राप्ति, यह धूर्त, इस सीधे साधे दर्शन को क्यों नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद ने एक दिन सागर तट स्थित पर्यटक गृह में बिताया और उनके एक गुरु भाई श्याम सुंदर ब्रह्मचारी, जो स्थानीय गौड़ीय मठ के सदस्य थे, उनसे मिलने आए। जब वे चले गए तो जगन्नाथपुरी के पुजारी समिति के एक सदस्य श्री सेवा शिव रथ भी प्रभुपाद से मिलने आए। प्रभुपाद जी ने उनसे इस्कॉन के भक्तों के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश पाने की संभावना के संबंध में बात की। पाश्चात्य वैष्णवों को मंदिर में प्रवेश से वंचित करना दुराग्रह पूर्ण और मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि इस्कॉन के सदस्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण रूप से लीन थे, इसीलिए केवल उनके जन्म या जाति के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश को योग्य नहीं समझा जाए। सेवा शिव का रुख मैत्रीपूर्ण था और वे श्री प्रभुपाद से सहमत थे। उन्होंने वायदा किया कि भक्तों की सहायता के लिए वे जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। उन्होंने प्रभुपाद जी को अपना एक पुस्तक के बारे में भी बताया, उन्होंने हाल में ही प्रकाशित किया था। और उन्होंने प्रभुपाद को अगले दिन संध्या समय एक छोटी सी पांडाल बैठक में इससे मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें पुस्तक का विमोचन होना था। प्रभुपाद जी राजी हो गए। बाद में प्रभुपाद पर्यटन गृह में अपने कमरे के बाहर बारामदे में बैठे थे। प्रभुपाद जी देख रहे थे कि शांतिलाल गर्ग मुनि की गाड़ी के पिछले हिस्से में दोपहर का भोजन बना रहा था और घी में तले जा रहे मसालों की गंध उठ रही थी। उन्हें गर्ग मुनि को बुलाया और कहा कि जब शांतिलाल भोजन तैयार कर ले तो उनमें से एक प्लेट भोजन करके लिए ले जाए। फिर तो शीघ्र ही प्रभुपाद चावल दाल पूरियों मसालेदार सब्जियों और चटनी के भोजन के आनंद लेने लगे। उन्होंने कहा कि शांतिलाल बहुत अच्छा भोजन बनाता है और सभी इस्कॉन मंदिर के भक्त उसकी कला सीख लेनी चाहिए। यदि मांस भक्षी ऐसा प्रसाद खा ले तो उन्होंने कहा कि वह अपनी पापमय आदत छोड़ देंगे। जब उस संध्या में प्रभुपाद अपने होटल के कमरे के कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे तो वे स्मरण कर रहे थे कि किस प्रकार 1965 में ही वे अमेरिका गए थे और समुद्री यात्रा में उन्होंने दो बार दिल का दौरा पड़ा था। प्रभुपाद ने कहा, लोग कहते हैं कि तीसरी बार दिल का दौरा पड़ने से मनुष्य की मृत्यु अवश्यमेव हो जाती है। मुझे दो बार दौरा जहाज पर ही पड़ चुका था और तीसरी बार न्यूयॉर्क में मेरी भाई और लकवा मार गया था और मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह बच गया। और एक लड़की उस जहाज से कप्तान की पत्नी ज्योतिष जानती थी, उसने कहा था कि स्वामी जी यदि आप अपना 70वां वर्ष पार कर लेंगे तो आप 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। श्री प्रभुपाद ने और उनके शिष्य हंसने लगे। प्रभुपाद ने आगे कहना जारी रखा, तो किसी तरह मैंने अपना 70वां वर्ष पास कर लिया है। मैं नहीं जानता कि लोग कहते हैं कि मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूंगा, किंतु 70वां वर्ष बड़ा कठिन था। तीन बार दिल का दौरा पड़ा और लकवा हुआ और मैं बिना परिवार का था। उस समय तुम में से कोई मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला था, मैं किसी पर भी निर्भर नहीं था। किंतु जहाज पर मैंने देखा कि कृष्ण मेरी रक्षा करने जा रहे हैं, मैंने उनके कार्य के लिए जा रहा हूँ। एक बार जब भक्त बार बार मस्तिष्क की धुलाई और कार्यक्रम के बिगाड़े जाने वाली चर्चा कर रहे थे, मस्तिष्क की यानी ब्रेन वॉशिंग, मस्तिष्क माथा सफाई नहीं करना, खोपड़ी सफाई करनी अंदर। उस दिन संध्या समय एक भक्त ने बताया कि कभी कभी विरोधी पक्ष प्रभुपाद के एक पूर्व शिष्य का साक्ष्य ले रहा था जो इस्कॉन के आंदोलन के विरुद्ध बोलने को तैयार था। प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि वह धूर्त है इसलिए हमने उसे निकाल दिया है, मेरे गुरु महाराज ने उसे बहिष्कृत कर दिया था, इसलिए उसके साक्ष्य का मूल्य क्या है। यह स्वाभाविक है जो के हमें छोड़ जाता है वह हमारे विरुद्ध बोले। धर्मोपदेश में ऐसी बातें होती रहती है, हम निर्विघ्न मार्ग की आशा नहीं कर सकते। भक्तगण सहमत हुए और उनमें से एक ने कहा कि जीसस क्राइस्ट ने एक शिष्य ने उनके साथ विश्वासघात किया था। श्रील प्रभुपाद ने वर्तमान कठिनाइयों की तुलना उस कठिनाइयों से की जिनका सामना उन्हें पहली बार अमेरिका आने पर करना पड़ा था। उन्हें 1967 की अपनी लगभग जानलेवा बीमारी याद आ गई। फिर भारत वापसी की याद आ गई, जहाँ उन्होंने पुनः स्वास्थ्य लाभ किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका लौटने पर भी वे रात में अच्छी तरह से सो नहीं पाए थे, क्योंकि उनके कानों में कोई आवाज सुनाई देती थी। प्रभुपाद ने कहा, जब तक यह शरीर है तब तक कोई न कोई कष्ट रहेगा। कृष्ण उपदेश है कि कष्ट आते आ जाते रहेंगे, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आगमा उपाय न अनित्यम स्थान स्थिति भारत। अतएव दैहिक कष्ट, मानसिक कष्ट और शत्रु, इस तरह की अनेक बाधाएं आती रहेगी, उनके विषय में क्या किया जा कहा जा सकता है और करा भी क्या जा सकता है। उन्होंने सहन करना ही पड़ेगा। हाँ, यह भौतिक संसार है, हम सब कुछ निर्विघ्न बहुत आनंद की आशा नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था कि हम जैसों का तो कहना ही कहा। कृष्ण कभी नहीं कहते कि मैंने जादू कर दिया है, तुम कोई को दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उन्होंने अर्जुन को कोई टिकिया नहीं दी थी, इसलिए हम लोगों उसी तरह आचरण करना पड़ेगा। आधुनिक गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें जादू का कोई भस्म दे दूंगा, फिर कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। किंतु कृष्ण, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, सहन करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गधे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भस्म दूंगा। अर्जुन ने भी नहीं पूछा कि आप मुझे युद्ध करने में क्यों कहते हैं, कोई भस्म दे दीजिए, मैं उसे फेंक कर उन्हें मारूंगा। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि वे अपने शत्रुओं को मारने के लिए कृष्ण से कोई जादू मांगते। उन्होंने वस्तुतः युद्ध किया, यही भगवत गीता है। इसलिए जैसी स्थिति है उसका सामना करो और कृष्ण पर निर्भर रहो, यही हमारा धर्म है। किसी भस्म चमत्कार या इंद्रजाल की आशा मत करो। दूसरे दिन सवेरे श्रील प्रभुपाद देवड़ी में खड़े होकर भक्तों की बंगाल की खाड़ी में तैरते देख रहे हैं। उन्होंने हरीशौरी को बुलाया और कहा कि मैं समुद्र में नहाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? हरीशौरी वहाँ उपस्थित अन्य भक्तों ने सोचा कि यह विचार अच्छा था। उन्होंने कहा कि समुद्र का जल स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। प्रभुपाद ने कहा कि इसकी परीक्षा करेंगे और दूसरे दिन सवेरे की मालिश के बाद एक गमछा पहनकर और एक तौलिया लेकर वे सागर तट पर गए। सागर तट उनके होटल से कई 100 गज दूर था और जब तक प्रभुपाद पानी में पहुंचे, उनके सभी शिष्य गमछे पहनकर उनके पीछे दौड़ गए। कुछ भक्त पहले ही समुद्र में थे और जब प्रभुपाद पानी के छोर पे पहुंचे तो वे सभी उनकी चारों ओर इकट्ठे हो गए। जब लहरें बढ़ती हुई आती तो प्रभुपाद की पैरों में बवरों में घेर लेती और हरीशौरी हथेलियों में जल लेकर प्रभुपाद जी के शरीर को नहलाने लगता। उनकी बाहें, छाती और सिर से सरसों का तेल छुड़ाने लगता और मालिश के समय इन अंगों में उसने लगाया था। इसके तुरंत बाद सभी भक्त प्रभुपाद जी के शरीर पर श्रद्धा पूर्वक हथेलियों से जल उठाने लगे। प्रभुपाद करीब करीब घुटनों तक जल में खड़े थे। उनका स्वर्णिम शरीर सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था और भक्तों के इस प्रकार उनके स्नान में सम्मिलित होने के कारण वे हंस रहे थे। भक्तों को लगा कि यह जल क्रीड़ा एक अभिषेक की तरह है और जब गुरु कृपा स्वामी अर्चा विग्रह अभिषेक का गीत चिंतामणि प्रकर्षत मसु गाने लगे तो अन्य भक्त भी उसमें से मिलित हो गए। वे समुद्र द्वारा अभिषेक में भाग लेने लगे और गाने लगे। श्रील प्रभुपाद को उसमें आनंद आ रहा था। कभी कभी वे अपना सिर आगे बढ़ा देते थे या संकेत देने के लिए कि वे चाहते थे कि उनके सिर पर और अतिरिक्त जल डाला जाए। जब भक्त जल डालने लगते तो वे अपने नेत्र बंद कर लेते थे। जब एक बार क्षण भर के लिए प्रभुपाद ने अपना संतुलन खो बैठे थे तो हरिशोरे ने उनको पकड़ लिया। प्रभुपाद जी के पैर रेत में घसते जा रहे थे और जब उन्होंने एक पैर बाहर निकाला तो उसमें कीचड़ लगी थी। जब वे अपने पांव की उंगलियां पटपटा रहे थे तो एक भक्त उन्होंने उनको साफ करने के लिए उन पर जल डालने लगा। तब प्रभुपाद झुके और समुद्र का जल अपने मुंह में लेकर बाहर थूक दिया। केवल गुरु कृपा स्वामी ने इतने तेज निकले कि उन्होंने झट कुछ जल उठा लिया था और उसे पी डाला। जब प्रभुपाद ने भक्तों को स्नान और उनकी मालिश में भाग लेने की अनुमति दी तो वे भावातिरेक में बह गए। 10 मिनट के बाद प्रभुपाद जल से बाहर निकले और उन्होंने अपने वस्त्र बदले और वापस अपने होटल पहुंचे। वहां दो भक्त उन्हें एक आराम कुर्सी तक ले आए। उन्होंने उस पर बिठाया और फिर उनके कमरे में पहुंचाए। तदंतर प्रभुपाद अपराह्न का विश्राम करने लगे। दोपहर के बाद सेवासी व्रत पुरी के एक अन्य ब्राह्मण के साथ प्रभुपाद से भेंट करने के लिए पुनः आए। उन्होंने प्रभुपाद को कुछ जगन्नाथ का प्रसाद दिया और जगन्नाथाष्टकम गाकर सुनाया। मौन प्रशंसा के बाद प्रभुपाद ब्राह्मणों से प्रसिद्ध स्तुति सुनते, जिसके प्रत्येक श्लोक का अंत जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे के साथ होता था कि हे ब्रह्मांड के स्वामी मुझे आप अपना दर्शन दीजिए। जब दोनों ब्राह्मणों ने गाना बंद किया तब प्रभुपाद ने कहा तो ये अमेरिकी और यूरोपीय वैष्णव जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम के लिए लालायित हैं। अब ये आपके हस्तक्षेप से जगन्नाथ स्वामी का दर्शन पाने के लिए योग्य हो सकते हैं। वे लालायित हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। सेवाशिव रथ ने भक्तों के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश न पा सकने पर उनके साथ पुनः अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने जो पुस्तक प्रकाशित की उसके बारे में वे प्रभुपाद जी को अधिक बताया कि वह श्रीमद् भागवत के जगन्नाथ दास कृत उड़िया के अनुवाद के कुछ उत्कृष्ट श्लोकों का संकलन थी। सेवाशिव ने उस पर कुछ टीका भी लिखी थी और एक उत्सव में उस पुस्तक का उसी संध्या को विमोचन होना था। प्रभुपाद ने पुनः वायदा किया था कि वे उत्सव में सम्मिलित होंगे और पुरी के ब्राह्मणों तथा धर्मनिष्ठ को संबोधित करेंगे। उस संध्या में समुद्र तट पर खुले पांडाल समारोह में श्रील प्रभुपाद सम्मानित अतिथि थे और उसके उनके शिष्य उनके साथ उत्साहपूर्वक कीर्तन करते हुए मंच तक गए। प्रभुपाद ने अपना आसन ग्रहण किया। कीर्तन समाप्त होने के बाद जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधों के से एक आगे बढ़ा और उसने श्रील प्रभुपाद जी को माल्यार्पण किया। तब सेवाशिव ने उद्घोषणा की कि हम ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो कृपापूर्वक इस अवसर पर उपस्थित हैं। जब हम परम पावन जगन्नाथ दास गोस्वामी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए एकत्र हुए हैं जो भगवान चैतन्य के समकालीन थे, अचानक 5 ब्राह्मण जो मंच पर बैठे थे उठे और मंच छोड़कर एक कीर्तन दल में संबंधित होने चले, जो नजदीक के एक खेत में एक वेदी के सम्मुख कीर्तन कर रहा था। प्रभुपाद के भक्तों को यह विचित्र लगा कि वे लोग उस समय उठकर चले गए जब प्रभुपाद अपना व्याख्यान आरंभ करने वाले थे। श्रील प्रभुपाद ने आरंभ किया, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनमें ध्वनि विस्तारक यंत्र में गड़बड़ी आ गई, यानी कि माइक में। श्रील प्रभुपाद रुक गए। उनका एक शिष्य बिजली का मिस्त्री भी था, उसने गड़बड़ी ठीक कर दी। श्रील प्रभुपाद जी ने पुनः अपना भाषण आरंभ किया। उनकी आवाज निकट के कीर्तन के विकर्षण पर ऊपर सुनाई दे रही थी। प्रभुपाद कह रहे थे कि इस तरह हम अपने विनम्र ढंग से जगन्नाथ स्वामी की संस्कृति के प्रसार का प्रयास कर रहे हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। सेवा शिव ने प्रभुपाद को स्पष्टतः इसीलिए बुलाया था कि वे उनकी नई पुस्तक के संबंध में बोलेंगे, और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को निजी तौर से पर बता चुके थे कि ये लोग उन्हें अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। किंतु प्रभुपाद ने उन अवसर का उपयोग भगवान जगन्नाथ के संबंध में बोलने में किया, न कि उड़िया के जगन्नाथ दास के संबंध में। उनके मन में एक विशेष संदेह था। प्रभुपाद ने बोलना जारी रखा, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मैंने 1967 में रथ यात्रा का आरंभ सैन फ्रांसिस्को में किया, और तब वे गत 9 या 10 वर्षों से बराबर निकल रही है, और वहां की सरकार ने रथ यात्रा के दिन का अवकाश निश्चित कर रखा है। 20 जुलाई सरकार की ओर से नियत रथ यात्रा का अवकाश दिवस होता है और लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। न केवल मेरे भक्त वरन बाहर के लोग भी रथ यात्रा में भाग लेते हैं। लगभग 10 से 12 हजार लोग सम्मिलित होते हैं और हम सबको प्रसाद वितरण करते हैं। वे हमारा आभार मानते हैं और समाचार पत्र लिखते हैं कि लोगों में ऐसा हर्षात अतिरेक कभी नहीं देखा जैसा कि रथ यात्रा के उत्सव में वे अनुभव करते हैं। पुलिस का यह कहना कि पाश्चात्य देशों में जो ही भीड़ बड़ी होती है तो वह उत्पात मचाने लगती है, किंतु पुलिस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारी भीड़ खिड़की दरवाजे तोड़ने वाली भीड़ नहीं है। उसके बाद हमने रथ यात्रा लंदन में आरंभ की और लंदन के ट्राफालगर स्क्वायर पर, जो लंदन नगर का सबसे प्रसिद्ध स्क्वायर है, वहाँ एक विशाल स्तंभ है जिसे नेल्सन स्तंभ कहते हैं। हमारा रथ उतना ऊंचा था कि गार्डियन समाचार पत्र ने हमारी रथ यात्रा को नेल्सन स्तंभ की प्रतिद्वंदी कहकर उसकी सराहना की। उसके बाद हमने फिलाडेल्फिया में रथ यात्रा आरंभ की। गत वर्ष हमने रथ यात्रा न्यूयॉर्क में आरंभ की और मेलबोर्न, सिडनी और पेरिस में भी हमारी रथ यात्राएं निकलती हैं। इस तरह पाश्चात्य देशों में एक के बाद हम रथ यात्रा आरंभ कर रहे हैं और जगन्नाथ स्वामी पाश्चात्य लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। अचानक मंच पर बैठे हुए कुछ लोग आपस में उड़िया में और जोर से बातें करने लगे। प्रभुपाद रुक गए, उनकी ओर मुड़े और बोले, यह क्या है? बातचीत बंद हो गई और वे आगे बोलते गए, तो आपकी जगन्नाथपुरी में अब संसार के प्रत्येक भाग से लोग आएंगे, यह कई दृष्टियों से लाभप्रद है। पर्यटन कार्यक्रम की दृष्टि से सरकार को लाभ होगा। जब लोग जगन्नाथपुरी की ओर, जगन्नाथ स्वामी की ओर आकृष्ट होंगे तो यह कितना अच्छा होगा कि किंतु दुर्भाग्य से आप इन विदेशियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे। इसका समाधान कैसे निकल सकता है? वह बाधा दूर की जानी चाहिए कि आप जगन्नाथ स्वामी को अपने घर में सीमित रखना चाहते हैं और उनकी कृपा का विस्तार नहीं होना देना चाहते हैं। वे जगन्नाथ हैं अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी हैं, केवल पुरीनाथ या उड़ियानाथ नहीं हैं, वे जगन्नाथ हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जगन्नाथ की यही परिभाषा है, सर्वलोक महेश्वरम, अर्थात कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी और नियंता हैं। तो आप सर्वलोक के निवासियों को जगन्नाथ के दर्शन से क्यों वंचित रखते हो? श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी चीजों कभी स्वीकार नहीं करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि पृथ्वी ते आचे जतन अग्रादि ग्राम सर्वत्र प्रचार भी हो मोराना। जब यह हो रहा था और वे यहाँ आने को इच्छुक हैं तो आप उन्हें रोकते क्यों? कारण क्या है? यह बहुत अच्छा नहीं है। श्रील प्रभुपाद तर्क देते रहे, जो विदेशी वैष्णव हो गए हैं उन्हें भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैष्णव के प्रति दुर्व्यवहार की भगवान की चैतन्य ने निंदा की है, अतएव प्रभुपाद ने घोषणा की कि वे पूरी विशेष रूप से इसीलिए आए हैं कि यहाँ के नेताओं से प्रार्थना करें कि वे विदेशी भक्तों से आपराधिक प्रतिबंध हटा लें और उन्हें प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। उन्होंने पुरी के नेताओं को आमंत्रित किया कि वे संसार भर में राधा कृष्ण और जगन्नाथ मंदिरों में जाएं और देखें कि ये विदेशी किस तरह कठोरता पूर्वक पापमय जीवन से बचकर वास्तव में विशुद्ध वैष्णव बन गए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि उनमें अवैध यौन संबंध नहीं है, वे मांस भक्षण मत्स्य अंडा भक्षण नहीं करते, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते, द्रुत क्रीड़ा नहीं करते, आप उनका वैष्णव के रूप में स्वागत क्यों नहीं करते, यही मेरी शिकायत है। मुझे आशा है कि यहाँ बहुत से विद्वान और भक्त उपस्थित हैं, उन्हें इसलिए अदूरदर्शिता पर प्रतिबंध को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर जगन्नाथ के भक्ति का प्रचार समस्त विश्व के कल्याण के लिए करें। जब प्रभुपाद जी ने अपना भाषण समाप्त किया तो हरिशौरी ने आगे की ओर झुक कर प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे, किंतु सेवाशिव शीघ्रतापूर्वक प्रभुपाद के बगल में आया और कहा, नहीं, उन्हें प्रश्न पूछने दें। सेवाशिव ने छोटी सी पेपर बुक पुस्तक उठा ली और उस संध्या के कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाने वाली थी। उन्होंने कहा, दी द भागवत ऑफ जगन्नाथ, और उसे श्री प्रभुपाद जी को पकड़ा दिया और उन्होंने जैसा कि आशा की जाती थी कि उसकी विशेषताओं और विमोचन के संबंध में बोलने की प्रार्थना की। श्री प्रभुपाद ने उस छोटी सी पुस्तक पर उदासीनता पूर्वक दृष्टि डाली और माइक्रोफोन पर बताते हुए कहा, तो मुझे क्या करना है, निसंदेह में उड़िया भाषा नहीं जानता, किंतु कहा जाता है कि यह जगन्नाथ का भागवत है, आज इसका विमोचन किया जाता है। प्रभुपाद ने पुस्तक के नीचे रख दी और जाने के लिए खड़े हो गए। श्रोता मंडली ताली बजाने लगे। तब श्री प्रभुपाद अंधेरे में रेत पर आगे बढ़ चले और उनके शिष्य उनके पीछे पीछे चलने लगे। वे निकट के गौड़ीय मठ के मंदिर में गए जहाँ भक्तों ने कीर्तन किया। तदंतर वे पुरुषोत्तम मठ नामक दूसरे मठ के मंदिर में गए और भक्तों ने वहाँ भी कीर्तन किया। पुरुषोत्तम मठ के कीर्तन के दौरान प्रभुपाद एक कुर्सी पर बैठे रहे। जब वे जाने की तैयारी कर उठे तो अपनी छड़ी का सहारा लेकर खड़े होने लगे, किंतु जब वे आधा ऊपर ही उठे थे कि अचानक वे बीच में ही कुर्सी पर गिर पड़े। हरिशौरी ने उन्हें अपनी बाहों में पकड़कर उनका पांव पर खड़ा करना पड़ा। प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं, वे धीरे धीरे हॉल से बाहर गए और कार में बैठ गए। हर किसी ने प्रभुपाद जी को इस तरह गिरने को नहीं देखा था, लेकिन हरिशौरी ने अपने कमरे में वापस आने पर एक गुरु भाई को लिखे गए पत्र में इसका यह कर उल्लेख किया था कि यह प्रभुपाद के गिरते हुए स्वास्थ्य का एक और लक्षण था। निसंदेहपुरी के पंडितों में किसी ने भी श्री प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ पर दिए गए भाषण से उनके स्वास्थ्य में गिरावट की लक्ष्य नहीं किया था। भुवनेश्वर में जनवरी 30 को 3 बजे सवेरे श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद लिखना प्रारंभ कर दिया था। बगल के कमरे में उनके एक सेवक ने दीवार में से आवाज सुनी और वह इतना विह्वल हुआ कि उन्हें अन्य भक्तों को जगा दिया। दोनों कमरों के बीच की दीवार लगभग 6 फुट ऊंची थी और उसके ऊपर फूस की छत तक एक खुला स्थान था। इस खुले स्थान से प्रभुपाद जी के कमरे का प्रकाश दूसरे कमरे में आता था और उनकी आवाज यद्यपि बहुत मध्यम थी फिर भी दूसरे कमरे में सुनाई देती थी। वे 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक का संक्षिप्त विवरण विवरण कर बोल कर मशीन पर लिखा रहे थे। उन्होंने आरंभ किया प्रथम अध्याय जिसमें अनंतर श्लोक है, भगवान कृष्ण के अवतार संबंधी में जानने को महाराज परीक्षित की उत्सुक का वर्णन करता है और इसमें इसका भी वर्णन है कि किस प्रकार कंस देवकी की आठवीं संतान द्वारा मारे जाने के भय से उसके छह पुत्र का वध कर देता है। दूसरे अध्याय में 22वां श्लोक है। प्रभुपाद का 90 अध्यायों में से प्रत्येक का धैर्यपूर्ण वर्णन उनके परंपरागत ज्ञान का निष्ठापूर्वक किया गया सार संग्रह था। उसमें न तो कोई मिलावट थी, न तो अपनी ओर से कोई व्याख्या थी, न कुछ जोड़ा गया था, न कुछ हटाया गया था। अतएव वे उसी पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहे थे जिस विश्वास के साथ भागवत के मूल वक्ता सुखदेव गोस्वामी 5000 वर्ष पूर्व महाराज परीक्षित से बोले थे। प्रभुपाद कह रहे थे केवल कृष्ण कथा का गान करने अथवा उनके उसके पुनः कथन से कोई व्यक्ति कलयुग के दोष से मुक्ति पा सके। कई व्यक्ति कलयुग के दोष से मुक्ति पा सकता है। कृष्ण भावनामृत की यही उद्देश्य है, कृष्ण कथा का श्रवण करना और भौतिक बंधन से मुक्ति पाना। अपने कंबलों पर बैठे हुए भक्तजन सुन रहे थे, अब उन्हें सोना नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था। 10वां स्कंद 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है जब सारा संसार राक्षसी शासन से पीड़ित था और प्रभुपाद उस समय की परिस्थिति की तुलना वर्तमान परिस्थिति से कर रहे थे। उनकी आवाज़ मध्यम थी किंतु दुर्बल नहीं थी। वे बिना हिचक और निश्चयात्मक लय में बोल रहे थे। उन्होंने लिखाया परमेश्वर के निर्देश के बिना असुर अपने आप को स्वतंत्र सम्राट और राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं और इसके लिए अपने सैन्य शक्ति बढ़ाकर उत्पाद पैदा करते हैं। जब ऐसे उत्पाद बहुत अधिक हो जाते हैं तो तब कृष्ण प्रकट होते हैं। इस समय भी संसार भर में बहुत से आसुरी राज्य विभिन्न तरीकों से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं और इस तरह सारी परिस्थिति विपदाग्रस्त हो गई है। अतएव अपने नाम के हरे कृष्ण आंदोलन में कृष्ण प्रकट हुए हैं जो निश्चय ही संसार का भार कम कर देगा। दार्शनिक धर्मनिष्ठ और सामान्य जनता को चाहिए कि इस आंदोलन को अत्यंत गंभीरता से लें क्योंकि मानवकृत योजनाओं और उपायों से संसार में शांति स्थापित नहीं पाएगी। श्रील प्रभुपाद रण क्षेत्र में अपने तंबू में बैठे हुए सेनापति की तरह दिखते थे और उनके शिष्य पैदल सैनिक की तरह लगते थे। वे जानते थे कि उपयुक्त सेनाधिकारियों के माध्यम से सूचना उन तक पहुंचने को पहले से ही वे प्रभुपाद जी का युद्ध नीति सुन रहे थे। वे रोमांचित उठे। पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने सुना कि जैसे कृष्ण ने आसुरी शासकों को परास्त किया था उसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वर्तमान युग की संस्कृति आसुरी संस्कृति का प्रतिकार करेगा। बाद में सवेरे भ्रमण में भक्तों में से एक ने प्रभुपाद जी को बताया कि वे प्रभुपाद जी के कमरे के दरवाजे पर उनके नाम का एक सूचना पत्र लगा दें कि योजना बना रहे थे कि 30 जनवरी 1977 को प्रातः 2:50 पर उन्होंने यह 10वां स्कंद आरंभ किया। प्रभुपाद जी को प्रसन्नता से भरा आश्चर्य हुआ कि भक्तों ने उनका डिक्टेशन सुन लिया था। प्रभुपाद ने कहा कि 10वें स्कंद में कृष्ण की बांसुरी सुन पड़ सकती है और 29वें से 34वें अध्यायों में उनका मुस्कुराता चेहरा ही दिखाई देता है। और पढ़े 9 बज गए। रामेश्वर स्वामी के स्थान पर हाल में ही प्रभुपाद जी के सचिव के रूप में एक मास के लिए जीबीसी का एक अन्य व्यक्ति सत्स्वरूप दास गोस्वामी आ गया था। एक दिन संध्या समय प्रभुपाद के कमरे में बैठे हुए सत्स्वरूप दास ने उनसे पूछा, श्रील प्रभुपाद, जब मैं पहले यहाँ आया था तो रामेश्वर महाराज ने मुझसे कहा कि आप बता रहे थे कि किस तरह प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा, किंतु मैं उस दृश्य की कल्पना करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यह सच है, किंतु इस आंदोलन ने अभी अभी ही तो जड़ें जमाई हैं, तुम्हें सींच कर इसकी रक्षा करनी है, फिर तुम फल पा सकते हो, तुम्हें इसे सुरक्षा प्रदान करनी है, लोगों को हमारे विषय में हमारी पुस्तकों के माध्यम से सुनाना है और हमें पुस्तक के विषय में भी बात करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, बीज पड़ गया है, अब प्रत्येक घर में और अधिक पुस्तकें पहुंचाकर इसकी रक्षा करो। पुनः प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क न्यायालय में होने वाले मुकदमे की चर्चा की। उन्होंने बताया कि कम से कम उन्हें हमारी पुस्तकें पढ़ने को कहो, यही हमारा बयान है, हमारा पक्ष यही है कि तुम पहले ही हमारी सारी पुस्तकें पढ़ ले तो अपना बाद में अपना निर्णय दो, उन्हें समाप्त कर लो और अपना फैसला दे दो, उन्हें ही सारी 84 पुस्तकें दे। मैं यहाँ रुकूँगा क्योंकि वहाँ से ही हमारी सेवा का आरंभ हुआ है। शिवराज्य और हम दोनों 1974 में के एंड में लाइफ मेंबर बने थे, तब तक हेनरी स्ट्रीट पे थे। वहाँ का मंदिर इटालियन मालिक का था और भक्त लोग ये 340 वेस्ट 55th स्ट्रीट न्यूयॉर्क के बड़ी आलिशान इमारत खरीद रहे थे और 1975 की रामनवमी पर वहाँ उस दिन प्रभुपाद जी की आज्ञा से प्रवेश कर दिया, लेकिन भक्त लोग ने वहाँ लीज चालू रखी, यानी कि जो लीज ही होता है तो मकान की जिम्मेदारी उनकी ही रहती है। ये तो अति उत्साह में प्रभुपाद जी को ये बहुत पसंद है करके आ गए, हाँ, और लीज चालू रखी। तो वहाँ का इटालियन मालिक घर खुला पड़ा देखता, कोई रहता नहीं है, उन्होंने देखा कि ये क्या है, और अंदर देखा तो मंदिर का कमरा और विस्तार करने के लिए उन्होंने बगल की दीवारें तोड़ी थी, ये था। भक्त लोग करते ही रहते हैं ऐसी हरकतें भगवान के, लेकिन वो ज़्यादा इन चीज़ों में प्रशिक्षित थोड़े थे, नहीं थे। प्रभुपाद जी ने काफ़ी चेतावनी दी लेकिन हर बार गड़बड़ी करते थे, यानी कि प्रशिक्षित नहीं थे, सूचना के अनुसार काम करने वाले हैं। ऐसा अतिरेक आ जाता है, उत्साहित हो जाते हैं, तो भक्त लोग ने वो मकान पर ध्यान नहीं दिया, तो वो जो इटालियन उसका मालिक था उसने आग लगा दी और थोड़ा नुकसान करवा दिया, सारा मकान नहीं जलाया जानबूझकर, लेकिन ये नुकसान के लिए कोर्ट में दावेदारी कर दी कि देखो ये बेदरकार लोग। तो एक कोर्ट केस वो चल रहा था, उसमें उससे पहले 1974-75 में ही ये ब्रेन वॉशिंग, यानी मस्तिष्क की सफाई और किडनैपिंग, डीप प्रोग्रामिंग इत्यादि क्रियाएं पर आक्षेप हरे कृष्ण आंदोलन पर आया। ये बहुत खतरनाक क्या बोलते हैं, नहीं कल्ट को क्या बोलते हैं, गुट, संगठन नहीं गुट, यानी कि थोड़ा है, संगठन तो बड़ा होता है। ये गुट बहुत खतरनाक है, यानी कि ये खतरनाक नए जमाने के धर्मों जब प्रवेश करते हैं तो वो पुराने वाले को चुपता है, इसलिए अनाप शनाप बोलने लगते जाने भी ना। और कोर्ट केस काफी चल रहा था, हमारे लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि भारतीय समुदाय में हम जाकर पिटीशन करें और पिटीशन के सिग्नेचर ले लें सब। हम लोगों ने 75,000 पिटीशन ले रखी थी, फिर भी जब समय बीतता जा रहा था, प्रभुपाद जी इस भारत में थे, देखो उनकी तबीयत बिगड़ रही है। प्रभुपाद जी ने ससुरूप महाराज को कहा, क्योंकि न्यूयॉर्क में वो जीबीसी थे उस समय, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जाओ, मेरी सारी पुस्तकें ये जज के टेबल पर रख दो। नहीं तो प्रभुपाद जी रोए भी थे, उन्होंने कहा कि भक्त का एकमात्र सहारा भगवान ही होता है, वो स्वयं नहीं थे भगवान पर आश्रित है, और इसका जजमेंट आए उसे पहले ये जज को पकड़ा लो, सारी पुस्तकों को पकड़ा दो। तो भक्तों ने किया, सारी पुस्तकें पकड़ा दी, और इतनी सारी पुस्तकें और अधिकृतता और उस पर बहुत सारे का क्या आलोचना विवेचन और सराहना देखकर तो जज काफी प्रभावित हुआ। देखो वहाँ जगन्नाथपुरी में बैठे बैठे प्रभुपाद जी जानते हैं कि यही एकमात्र उपाय है। हम फालतू थोड़े, किताबें बुनियाद क्यों है, लिखा है उसमें कौन गप्पा मार सकता है, गप्पे मार सकते हैं क्या? और ये तो धर्म की बात है, वो तो काफी प्रभावित हुए, उसने जैसा जजमेंट दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया। आप जजमेंट को पढ़ो, रोए खड़े हो जाएंगे। तो ये काफी सराहनीय बात है। तब से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का आंदोलन प्रामाणिक कहलाने लगा बना। ये प्रामाणिकता के उपरांत भी गुरु शिष्य परंपरा जो प्रभुपाद जी, तब भारतीय वासी हो अब वहां थोड़े शामिल होने लगे, नहीं तो ये कल्ट है, कोई ऐसे हिप्पियों का गुट है जो हरे राम हरे कृष्ण करा करते हैं। नहीं, अभी इन लोगों की आंख खुलने लगी है। तब लाइफ मेंबरशिप इत्यादि काफी बढ़ाई हम लोगों ने, और घर घर प्रचार करने लगे। नहीं तो पहले रथ यात्रा 1976 में हुई, रथ यात्रा देखने के लिए भी आए लोग, प्रभुपाद जी भी आए थे, प्रभुपाद जी के पहले दर्शन हमें वहां हुए रथ यात्रा में। लेकिन रथ खींचते हम देखते हैं कि भारतीय लोग सड़क पर खड़े रहकर दिखा करते हैं, हमें हाथ खींच करके उनको बुलाना पड़ता है कि चलो आओ रथ खींचो, ऐसा पुण्य कहाँ मिलेगा आपको। तब धीरे धीरे लाज शर्म छोड़कर खींचते थे, पकड़ना पड़ता। भारतीयों की ऐसी दशा थी कि अपने धर्मों को ही नहीं समझते, क्योंकि यहाँ से ही तो गए हम हैं। उस समय प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो बिल्कुल जानता नहीं कि कृष्ण क्या कौन है, ऐसी दशा। तो इस तरह हम सेवा रथ बन गए। एक दूसरा कोर्ट केस जो था उसमें हम लोग हार गए। जज ने $50,000 का फाइन ठोक दिया और इसको हम तक फक्कड़ बाबा कोई ऐसा हाथ में कोई भी मकान भी गिरवे नहीं रह सकता, क्योंकि वैसे तो पुस्तकों का वितरण करके ही तो पैसे आते हैं। लाइफ मेंबरशिप जस्ट 1974 के एंड में ही शुरू हुई है, और वो भी हम लोग $20-25 देते थे महीने, $1,111 थे उस समय, और वहाँ तक भी वही रहा, लेकिन अभी कोई करता नहीं। यहाँ तो 25,000 है और 35 हो गए, फिर भी $1,111 से कम है ना। तो कहने का मतलब है कि ये फाइन जब ठोक गया तब चिंता में पड़ गए हम लोग। उस समय करीबन 25-30 ही लाइफ मेंबर बने थे, ज्यादा कोई थे, और हम लोग हर रोज हफ्ते में एक बार मिलते थे, मीटिंग कर लेते थे, क्या है क्या नहीं। और ये पैसे का जब प्रश्न आया तब परेशानी हो गई। किसी वहां के भारतीयों के पास पैसे कढ़ाना यहाँ तो आसान है, वहां मुश्किल है। लेकिन भगवान की कृपा से ही एक लाइफ मेंबर था जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर था, वो भी लाइफ मेंबर बना था, तो उसने सुझाव दिया कि कुछ तो करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास तो कोई क्रेडिट है ही नहीं, क्रेडिट कहां से ला। तो कहा कि लाइफ मेंबर्स ही क्रेडिट हैं, वो लोग बाहर कमाते हैं, तो इन लोगों के पास गारंटी ले जावे। इन लोगों की गारंटी पर हम लोन दे सकते हैं। अभी गारंटी लेने जाने कौन, आप अभी भी आए हैं, हम ज्यादातर लोग आए 74-75 में ही आए, और उस समय तनख्वाह इतनी होती ही नहीं थी। हम भी 71 में गए थे तो $2 पर घंटे की कमाई करने गए थे, चालू की थी, कुछ ना कुछ खाने पीने का तो स्वादन करना पड़ेगा, बाद में रिसर्च की जॉब मिली, लेकिन पहले कुछ नहीं होता। वैसे ही भी फक्कड़ बाबा जाते हैं, सारा दिन हम लोग कुछ खाते नहीं थे, शाम को जाकर पिज्जा मार लेते थे एक सारा, और कुछ नहीं। उस समय भी $1.5-2 में मिलता था, तो $15-20 में। तो कहने का मतलब है कि ये गारंटी लेने कौन जाए, तो यही एकमात्र उपाय रहा। तो गजहंत प्रभु करके हमारा ग्रुप आए, वो लाइफ मेंबरशिप डायरेक्टर था, उस समय काफी उत्साही था, किसी को नहीं पकड़ा, हमें पकड़ा उसने कि प्रभु जी आई नीड योर हेल्प। मतलब क्या, इतने सारे लाइफ मेंबर हैं, 30 कम से कम, हम 17 आधे लाइफ मेंबरों के पास चले हैं, सबके पास $3,000-3,000 की गारंटी लिखवा दें, तो हम क्या करना पड़ेगा। अरे इन लोगों को बैंक में क्या है, अकाउंट में क्या है, कितना है, वो जरा बताना पड़ेगा। हाँ, और नौकरी है, ये है, तो सिर्फ गारंटी पेपर साइन करा दो और उनके जो बैंक के कागज हैं वो दे दो बस। तो कागज तो देंगे बाद में, उस चल जाएगा, लेकिन गारंटी ले लो पहले। तो 17 आदमियों को ढूंढना, कौन कहाँ है, कैसे है, और विस्तार तो बहुत होता है वहाँ। 3 स्टेट, हाँ, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी, और 3 में हम एक दिन में मेरी गाड़ी में ही घूमे, ले गए मैं सब, और 17 आदमियों के साइन करा के ले आए। इन्होंने की, हमने की, अब बाकी के और 15, हाँ, तब 51,000 डॉलर की मिली विदिन 24 आवर्स। तो उस समय 51 है, आज का कितना होता है पता है? 1.5 लाख को ऊपर होता है डॉलर, उसे 65 से गुणा कितना होगा। लेकिन भगवान का काम है, लेकिन हमें उत्साह। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, ये 17 आदमियों ने, उसने ही कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी ने तो सब ने हमें डांट मारी। एक इंडियन दूसरे इंडियन के पास पैसे इकट्ठे करने जाता है तो कहता है ये लोगों को दे रहा है, इनको तो जानते नहीं हम, लाइफ मेंबर हुए हैं तो क्या जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो हम तो तुम्हें पकड़ेंगे, ये लोग देते हैं नहीं, वापस करेंगे कि नहीं। तो मैंने बोला क्या बैंक में ही देखना है कि वो लोग हर महीने चुकाते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हम पर डाली। मैंने बोला हाँ हम स्वीकारते हैं, ये जिम्मेदारी भी स्वीकारेंगे, और हमने हर महीने हिसाब दिया कि दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, एक साल में खत्म कर। सो इस तरह ये प्रभुपाद जी ने 84 पुस्तकें उस समय लिखी थी, सारी पुस्तकें अंग्रेजी में दे दी, और वो तो इतना प्रभावित हुआ। लेकिन इस तरफ देखें तो भक्त लोग देखो मैं गलती की है, अभी सजाग रहे हैं, लेकिन गलती तो होती ही रहती है। हाँ, वो मकान बेच दिया जहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम यदि अमेरिका में मरे तो हमारी समाधि ऊपर 13वें मंजिले में रखी जाए, जिसके द्वारा मैं हमेशा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का ही हूँ, देखता रहूँ। ऐसी बातें पढ़ोगे आप उसमें। हाँ, लेकिन वो मकान बेचती है, फिर से रास्ते पर आ गए, फिर से थोड़ा चालू किया, अभी वो मकान भी बेच रहे हैं, रोक लगवाई, लेकिन वो भी कोर्ट केस जाएगा। अरे पैसे देखकर क्या मति बदल जाती है, जो भी है समाचार सुनते ही रहना। लेकिन ये सर्वप्रथम मंदिर इतना महत्व का है कि वहां कुछ ना कुछ समाचार नए नए आते रहते हैं, यूं नहीं तो यूं। तो कहने का मतलब है कि ये श्री प्रभुपाद जी की वहाँ न्यूयॉर्क से जो कारकिर्दी शुरू हुई है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ की स्थापना, सर्वप्रथम दीक्षा विधि इत्यादि, और भगवान के छोटे विग्रह भी लेकर घूमना, जबकि बड़े विग्रह तो जगन्नाथ ही आए, वो सैन फ्रांसिस्को में आए। तो इस तरह आप श्री प्रभुपाद जी की ये आत्मकथा लीलामृत जीवन चरित्र और प्रभुपाद जी का भगवान के साथ जो तादृपता है और भक्तों के लिए, भक्तों की सेवा के लिए ये पंडाओं को भी काफ़ी सीधा सुनाना, उसमें दो बात नहीं है कि छिपके सुनाए और पॉलिटिक्स करके इन लोगों को ये दे दें, नहीं सीधा। तो ये सारी घटना आपने पढ़ी और सुनी, तो किसी को कोई संदेह है कि ये चरित्र प्रभुपाद जी का कितना महत्वपूर्ण है? कोई प्रश्न है? जज लीही उसका नाम है और उसने ऐसा चुका है जो संक्षिप्त में मुझे जितना याद है पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा समांतर कोई जजमेंट नहीं है किसी भी धर्म के लिए नहीं है। जज लीही ने ये कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक अधिकृत और प्रामाणिक परंपरा से वैदिक धर्म से चला आया है और उसका आधार वैदिक शास्त्र है और उनके मुताबिक भक्तों का जीवन है। तो ये ब्रेन वॉशिंग केस और ये सिर्फ उसकी प्रामाणिकता की अज्ञानता से पैदा हुआ है। यदि लोग स्टडी करें तो उनको काफी महसूस होगा। तो ये कोई डेंजरस कल्ट नहीं है, ये तो बहुत उत्कृष्ट आध्यात्मिक विचारवादी संस्था है ऐसा। तो ये जजमेंट इस कौन की और प्रगति कराने के लिए प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण का भाग बन गई है। ए फुल जजमेंट आप गूगल करो, ये 1996 में आया। गूगल करो, सब कुछ गूगल में है। गूगल में गड़बड़ी भी है और बात सारे। और कुछ जगत गुरु श्री प्रभुपाद की
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. हरे कृष्णा हरे